हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत ने मखीजा के साथ मीटिंग की तो मखीजा ने उसे बहाना बनाते हुए कहा कि उसे खुद नहीं पता था वहाँ का होटल इतना घटिया होगा। वेदांत को ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ा। 5 दिन बाद दोपहर का वक्त, रूहान एक शॉप में घूम रहा था। वो शॉप दिखने में किसी छोटे मॉल जितना बड़ा था, जिसमें ज़रूरत के हर सामान का अलग से सेक्शन बना हुआ था। रूहान फ़िलहाल डेकोरेटिव आइटम वाली जगह पर घूम रहा था। उसके साथ मोहिनी थी। मोहिनी ने उसे पर गुस्सा करते हुए कहा, तो सुबह से मुझे इस स्टोर में घूम रहा है और बता भी नहीं रहा है कि तुझे आखिर किसके लिए डेकोरेशन करनी है। अगर तू बताए तो उसके अकॉर्डिंग में तुझे अच्छी अच्छी चीज़ सिलेक्ट करवाने में हेल्प कर दूंगी। रूहान ने वहाँ लगी लाइट्स को देखते हुए कहा, ये फ्लावर वाली लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है या बटरफ्लाई शॉप वाली? मोहिनी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कर रहा है तो बटरफ्लाई वाली ज़्यादा अच्छी है, अगर अपनी मामा के लिए कर रहा है तो फ्लावर वाली ज़्यादा अच्छी है, और अगर अपने दोस्तों के लिए कर रहा है तो जो तुझे अच्छी लग रही है वो ले ले, पर पहले बता तो सही कि किसके लिए कर रहा है। रूहान ने शॉपकीपर से बटरफ्लाई वाली लाइट्स को पैक करने के लिए कहा और फिर मोहिनी के साथ दूसरे सेक्शन में बढ़ते हुए बोला, आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना कंप्लीट हुआ है, मुझे इसे सेलिब्रेट करना है। बहुत दिनों से मेरे और मैडम जी के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं, अच्छे से बात नहीं हो पा रही है। रात को तो वो फिर से सोफे पर सोने तक की जिद कर रही थी, और मैं उन्हें थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ, बस उसी के लिए मुझे सामान चाहिए। आई होप अब तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो गए होंगे और तुम चुपचाप मेरी मदद करोगी। रूहान अब बकरी सेक्शन के पास था। उसने बहुत सारे केक की डिज़ाइन देखी, अच्छी, और एट दी और उसे एक वेलवेट रेड कलर केक पसंद आया जो बेहद खूबसूरत था और उस पर गुलाब के फूलों से डेकोरेशन थी। उसे देखकर रूहान के होठों पर एक मासूम सी स्माइल आ गई। उसने उसे शॉपकीपर को अपना एड्रेस देते हुए कहा, रात को 10 बजे ये डिलीवर हो जाएगा ना? शॉपकीपर ने एड्रेस लिखते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल। उसके बाद रूहान मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए उसे लड़कियों के कपड़ों वाले सेक्शन में ले जाते हुए बोला, मुझे मैडम जी को कपड़े भी गिफ्ट करने हैं, बताओ उन्हें क्या देना चाहिए? मैंने उन्हें अभी तक मॉडर्न ड्रेस में नहीं देखा है और मैं उन्हें वही ड्रेस गिफ्ट करना चाहता हूँ, बताना कौन से वाले ज़्यादा अच्छे हैं। मोहिनी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अगर उन्हें पसंद ही नहीं है तो तू उन्हें ये क्यों गिफ्ट करना चाहता है? मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें उन्हें एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करनी चाहिए, क्या वह तुम्हें साड़ी में अच्छी नहीं लगती है? रूहान ने याद किया उसे अनाही साड़ी में कितनी खूबसूरत लगती है और उसने जल्दी से हद बढ़ाते हुए कहा, हाँ साड़ी में भी अच्छे लगते हैं वो। ये सुनकर मोहिनी ने स्माइल करते हुए कहा, पर तेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है तो तूने ऑरेंज कलर की साड़ी गिफ्ट कर, वो सच में बेहद खूबसूरत लगेगी उसमें। रूहान ने कुछ सोचते हुए साड़ियों वाले सेक्शन में जाकर उसे सेल्स गर्ल से ऑरेंज कलर की साड़ी मंगवाई और कुछ देर बाद उनमें से एक साड़ी उसे बिल्कुल परफेक्ट लगी अपनी मैडम जी के लिए। उसने उसे भी पैक करवा लिया। उसके बाद वो ज्वेलरी वाले सेक्शन में जाते हुए बोला, प्लीज़ इसके लिए तो मुझे कोई राय मत मांगना, मुझे नहीं पता है कि उनका क्या पसंद है, इसमें तू ही मेरी हेल्प कर सकती है कि कौन सी डिज़ाइन बेटर है। मोहिनी ने सारे आइटम्स को देखना शुरू किया और आखिर में उसे एक रिंग बेहद पसंद आई। उसने वो रिंग जल्दी से रूहान को दिखाते हुए कहा, ये बहुत प्रिटी है, तुम्हारी मैडम जी को ज़रूर पसंद आएगी। वो रिंग पूरी गोल्ड की थी, जिसमें कहीं भी कोई अलग डायमंड नहीं लगा था, वो प्योर गोल्ड रिंग थी। रूहान ने स्माइल करते हुए कहा, नाइस चॉइस। वो सारा सामान खरीदने के बाद वे दोनों एक कैफ़े में बैठे थे। मोहिनी ने जूस पीते हुए कहा, तुमने आज मुझे बहुत तंग किया है रूहान, मेरी कमर, मेरे पैर सब इतने दर्द कर रहे हैं ना, क्या बताऊँ, मेरे पूरे बदन से गालियाँ निकल रही हैं सिर्फ तेरे लिए। पर रूहान जैसे मोहिनी की बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके दिल में तो एक ही थॉट चल रहा था कि अनाही ये सब देखकर खुश होगी या फिर परेशान हो जाएगी। रूहान ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ्लैश होते नाम को देखा और तुरंत ही कॉल पिक कर लिया तो सामने से विहान ने थोड़ा हिचकिचा के कहा, सॉरी जीजू, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, पर कॉलेज में इतने दिनों की छुट्टी लेने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं बस आपसे यही पूछना चाहती थी। रूहान ने कुछ सोचते हुए कहा, प्रॉब्लम तो हो सकती है पर मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जल्दी आ जाना। वैसे ही आज तुम्हें पता है क्या, रिहान ने बहुत जोर लगाया अपने छोटे से दिमाग पर उसे कुछ याद नहीं आया। उसने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा, क्या है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। चौहान ने जल्दी से कहा, तुम्हारे और वेदांत भाई की शादी को आज पूरा एक महीना हो जाएगा और तुम उनसे दूर होगी। अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम आना चाहो तो मैं ड्राइवर भेज दूंगा। शाम तक तो तुम घर पहुंच जाओगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। वेहां जो इतनी देर आराम से बैठी थी वो अचानक ही उछलकर सोफे से उठती हुई बोली, वाह, आज तो 5 तारीख है। 5 तारीख को ही तो हमारी शादी हुई थी। आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। आप ड्राइवर भेजिए, मैं बस अभी रेडी हो जाती हूँ। इतना बोलकर वेहान ने कॉल कट किया और उसके तुरंत बाद रूहान ने निमानी हाउस के सबसे भरोसेमंद ड्राइवर को वेहां खिलाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही फोन कट हुआ, मोहिनी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों का अच्छा है। दोनों के दोनों मंद बुद्धि हो, लेकिन एक दूसरे को ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। रूहान ने मोहिनी को बताया था कि वेहां कैसे उसे अनाही और खुद के रिश्ते के बारे में समझती है। उसे बोलता है कि उसे आने से सब कुछ शेयर करना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ये सब याद करके रूहान ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी छोटी बहन होती तो वो बिल्कुल मुझे वैसे ही गाइड करती जैसे वेहां करती है। मोहिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर भाई बहनों में भी झगड़ा बहुत होता है। तुम दोनों इस बात का भी खास ख्याल रखना। मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत क्रीपी लगती है। बस मौका चाहिए होता है किसी को लड़ने के लिए। रूहान ने हल्के गुस्से में कहा, मेरी फैमिली बिल्कुल भी कचरा नहीं है, बस तेरी सोच कचरा हो गई है। अब चल, कॉलेज आवर्स खत्म हो गए हैं। अगर घर नहीं पहुंचा तो सबको लगेगा मैं फिर से किसी क्लब में चला गया हूँ, और मैं नहीं चाहता मैडम जी के सामने मेरे बारे में ऐसी कोई भी बात हो। मोहिनी ने हंसते हुए रूहान का एक गाल खींचकर कहा, हाँ, मैडम जी के स्टूडेंट, समझ गई मैं, चलो चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अनाही भी कैलेंडर में लगी डेट को देख रही थी। उसे रूहान की बातें याद आ रही थीं कि एक उसे एक महीने में डाइवोर्स दिलवाना चाहता था क्योंकि वह उसे खुद के लायक नहीं समझता है, और पिछले 5 दिनों के उसके बिहेवियर ने अनाही के दिल में भी ये डाउट पैदा कर दिया था कि क्या वह पूरी जिंदगी रूहान के साथ रह पाएगी जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, यहाँ तक कि इसके लिए भी गुस्सा करता है कि वो ऑफिस में उसे अटेंशन नहीं देती है, जबकि वो ऑफिस में काम करने आती है, उसको अटेंशन देने नहीं। उसने घड़ी की तरफ देखा, अब रूहान का ऑफिस आने का वक्त हो चुका था। अनाही वापस अपने काम में जुटते हुए बोली, मैं रूहान जी के बारे में ऑफिस आवर्स में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, वरना मुझसे काम नहीं होने वाला है।
वही वेदांत अपने फोन में ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहा था और उसका एड्रेस लग रहा था सिरोही में मौजूद विहा का घर, ताकि उसे फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी का गिफ्ट मिल पाए। उसने चौथी शिफ्ट करके गहरी सांस लेते हुए कहा, होप सो टोमैटो, तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आए और तुम अपना गुस्सा छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूँ।